आदरणीय राजू भाई जी का हम सभी एक ताल की करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज आप हम सभी की लॉटरी लगी है। जब लॉटरी लगती है तो कितनी खुशी होती है, और वो खुशी सचमुच आप सभी के चेहरों से दिखाई दे रही है। राजू भाई जी, अचानक लॉटरी लगी है। राजू भाई जी हम सभी को बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है उसके विषय में बताएंगे, अनुभव कराएंगे। उससे पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय दे देना चाहूंगी। आप बाल्यकाल से ही आध्यात्म में रुचि रखते हैं, और आप सिर्फ 9th क्लास में पढ़ते थे जब आप पहली बार मधुबन आए थे 1971 में, और 1972 में तो आप डायरेक्ट ही बाबा के घर में समर्पित हो गए 10वीं कक्षा पास करने के पश्चात। कितनी छोटी उम्र होगी आप सभी समझ सकते हैं, सिर्फ 14-15 साल की होगी आपकी आयु, 16 साल की थी, क्योंकि पहले जो है ना स्कूल में 3 साल के को नहीं लेते थे, 6 साल 7 साल तब एडमिशन होता था। और आपने मधुबन में विशेष जब एंट्री की तो आवास निवास की सेवा की। हमारी एक शांति माता थी मधुबन में, बाबा के समय से मेरठ की, तो वो आवास निवास की सेवा संभालती थी। उस समय चारपाई होती थी पट्टी वाली, ये कोच नहीं होते थे, तो जिनको भी ये सेवा होती थी तो वो एक पार्टी जाती थी तो उसकी पट्टियां कस कस करके चारपाई को टाइट करते थे। तो शांति माता के साथ आपने आवास निवास की सेवा आरंभ की, लेकिन आपके अंदर अनेक प्रतिभाएं छिपी हुई थी जो धीरे धीरे बाहर प्रकट होती गई, और आप ऑलराउंड सेवा में अपना योगदान देते गए। और फिर दादियों के आप अति निकट रहे और विश्वसनीय पात्र रहे, जिससे आपको विशेष सेवा दादियों के साथ मिली। जो भी अनेक सेवा केंद्रों से पत्र आते थे उन पत्रों को पढ़ करके दादियों को मुख्य मुख्य हेडलाइंस सुनाना, उसका आंसर देना, ये सब आप कार्य करते थे। आपने यज्ञ में आने के पश्चात आपकी रुचि और प्रतिभा के अनुसार आपने सिंधी भाषा सीखी, और वो भी सिर्फ 10 दिन के अंदर, और टाइप भी करना सीख लिया, जिससे जो भी आप मुरली में प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, ऐसे दीदी की इन्वेंशन थी, मनमोहिनी दीदी जी की इन्वेंशन थी, और उन्होंने आपको योग्य पात्र समझा, और आपने उस सेवा को भी बहुत प्यार से निभाया और निभा रहे हैं। और आपको इसीलिए यज्ञ में, यूं तो राजू भाई बहुत हैं, लेकिन आपका विशेष होलावड़ा नाम है राजू भाई मुरली वाले। एक बाबा के लिए कहा जाता है मुरली वाले, और एक राजू भाई के लिए कहा जाता है मुरली वाले। आप 1976 से मुरली डिपार्टमेंट की सेवा बहुत ही प्यार से और जवाबदारी से संभाल रहे हैं। आप ग्राम विकास विंग के हेडक्वार्टर के चेयरपर्सन भी हैं। ज्यादा न बोलते हुए मैं आप सभी को, कितना उत्साह है कि कब राजू भाई बोले, कब हम सुने, तो इसीलिए राजू भाई जी से ही मैं निवेदन करती हूँ, आप सभी को बताएंगे कि बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या है। राजू भाई जी।
ओम शांति। ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में मधुबन नाम सुनते ही दो बातें सामने आती हैं। मधु मधुरता का प्रतीक है, वन वैराग्य का प्रतीक है। तो मधुबन में आना माना इन दो गुणों को सीख के जाना। एक हमारी वाणी में मधुरता सरलता आ जाए और अंदर से आंतरिक वैराग्य। दिखावे वाला नहीं, दिखावे वाला वैराग्य तो बहुत थोड़ा समय रहता है, जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं शमशानी वैराग्य। शमशानी वैराग्य तो जानते हैं आप सब, कोई ने शरीर छोड़ा, बहुत नाम वाला था, बहुत पैसे वाला था, और जब उसको संस्कार के लिए शमशान में ले गए, देखा ऐसे अग्नि एक लकड़ियों के बीच में रख दिया, जला दिया, कोई वैल्यू नहीं रखी, तो वैराग्य आता है। ऐसे ही सबके साथ हो जाएगा, लेकिन वो थोड़े समय वहां पर वैराग्य आता है, फिर जब मार्केट के अंदर जाता है, चहल पहल दिखता है, सब मौज से खा पी रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वहां रही भूल गया वैराग्य। तो बाबा कई बार कहते हैं कि कभी कभी मेरे बच्चों को शमशानी वैराग्य आता है, थोड़े समय के लिए कोई बात हो गई, कोई घटना घट गई, कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ गई, उसका सामना नहीं किया, समा नहीं सके, सहन नहीं कर सके, वैराग्य आ गया, लेकिन वो बात पूरी हो गई तो वैराग्य भी पूरा हो गया। जैसे मिसाल हमारे कोविड के समय, जब 2020-21 कोविड का पीरियड चला, भारत के अंदर बहुत सारे लोगों को वैराग्य आ गया, ऐसा होगा, इतना पैसा है, इतने साधन है, इतने अच्छे संबंध है, लेकिन किसी को भूल से भी अगर पॉजिटिव निकल गया, बोल दिया डॉक्टर ने इसको पॉजिटिव है, बस नेगेटिव से लोग डरते हैं, लेकिन वहां पॉजिटिव से डरने लगे। 14 दिन तक उसको क्वारंटाइन में रख दिया, और उसके बाद क्या हुआ तो आप सब जानते हैं, बहुत वैराग्य था, लेकिन वो वैराग्य की घड़ियां पूरी हो गई, फिर वैराग्य भी वहीं का वहीं रह गया। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे संसार असार है, अंदर से रहना चाहिए, इसमें कोई सार नहीं है, भले हम यहाँ रह रहे हैं लेकिन रहते भी ऊपर हैं, उपराम हैं। जैसे हमारी दादियों ने अपने जीवन से दिखाया, कितना सब साधन सुविधाएं आती गई, सबका प्रयोग भी किया, लेकिन कहीं भी आकर्षित नहीं हुई, कहीं फंसी नहीं, प्रयोग किया लेकिन अनासक्त भाव से किया। ब्रह्मा बाबा तो उससे भी उपराम थे, कोई चीज स्वीकार नहीं की, कोई साधन स्वीकार नहीं किए, कितना भी उन्होंने इस भवन में, यहाँ ही पांडव भवन में रह के सहन किया। अभी जो आप बाबा का कमरा देखते हो, बड़ा है, अभी उसको अच्छा रूप बनाया है, लेकिन जब मैं 71 में आया था, ये झोपड़ी और बाबा का कमरा बहुत साधारण, ये झोपड़ी बनी थी, ये जो खजूर के पत्ते होते ना, खजूर के, उसकी झोपड़ी थी, वहीं पर बाबा बैठते थे, बच्चों से मिलते थे, पत्र लिखते थे, और उसी कमरे में रहते जहां पर टीन सीट बरसातों में टपकती थी और ठंडी के अंदर इतनी ठंडी बर्फ जैसी जम जाती थी। बाबा के कमरे में कहीं लेटरिन बाथरूम नहीं था। बाथरूम अभी 93 की एज में बाबा शरीर छोड़ा अव्यक्त हुए, और बाथरूम के लिए अगर उठना है तो कहाँ जाना है, वहाँ जो धोबी घाट अभी वो बाथरूम बने ना उस साइड में दूध के भंडारे की तरफ, बाबा का वहीं पर ही कनाप से घेरा हुआ एक बाथरूम लेटरिन था, छत नहीं थी उसके ऊपर, बरसात में छाता लेके जाना होता था। बाबा ने बच्चों के लिए हवाई महल बनाया, ये जो हवाई महल है ना बाजू में साथ में, इसका नाम हवाई महल है, बहुत अच्छी हवा आती जाती है। तो जब बन के तैयार हुआ तो बच्चों ने कहा, बाबा ये मकान बहुत पुराना है, बहुत तकलीफ होती है, पानी टपकता है, अभी आयु आपकी बड़ी होती जाती है, प्लीज इसमें चलो, इस मकान में रहो। नहीं बच्चे, शिव बाबा ने पुरानी जुत्ती ली है ना, पुराने शरीर में आया है, उसको पुराने घर में ही रहना है, नया घर तो बच्चों के लिए बनाया है। बाबा ने उसको स्वीकार नहीं किया, कोई साधन होते हुए वैसे न्यारा प्यारा उपराम, इतनी सब सेवाएं की, बच्चों को आगे बढ़ाया, बच्चों का नाम किया, बच्चों के लिए सब साधन हो, सब सुविधाएं हो, उनके रहने की सोने की, लेकिन प्लानिंग बहुत बाबा की ऊंची ऊंची थी। बाबा को भविष्य का पता चलता था कि ऐसा होगा, एक दिन इतने बच्चे आएंगे, जिस स्थान पर आप बैठे हैं मेडिटेशन हॉल, यहाँ पर पहाड़ियां थी, चट्टाने थी, और बाबा कहते थे बच्चे संख्या बढ़ रही ना, ये यहाँ पर ट्रेन के डब्बे जैसे कमरे बना दो, दो सीट तीन सीट वाले नीचे ऊपर सो जाते हैं ना। विदेश में अभी भी कई कई हमने देखा कि वो तीन एक ही चारपाई पर नीचे ऊपर बीच में तीन जने सो सकते हैं। तो बाबा की प्लानिंग थी, अगर बच्चे ज्यादा आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ सोएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे मकान, सब कुछ बाबा की बुद्धि में प्लानिंग है, सब जानता है क्या होने वाला, फिर भी सब बातों से उपरा। पुरुषार्थ बड़ा गुप्त था, और अंत में भी कहा, बच्चे देह मन को जीतना सरल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, कहाँ बच्चे अभी तक देह मन खत्म हुआ, 18 जनवरी की लास्ट मुरली में कह रहा है देह मन जीतना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब गेट पर गया तो छुट्टी करके बाय बाय कर लिया, विदाई, और वहां से आके 5-10 मिनट में ही शरीर छोड़ दिया। ऐसे छोड़ा जैसे बाबा कई बार मिसाल कहते हैं ना कि सांप केचुली छोड़ देता है, निकल गया, उड़ गया पंछी। अगर वैराग्य नहीं होता इस देह से, इस देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, तो कहीं ना कहीं बुद्धि अटकती, लटकती। अंदर से वैराग्य था, आंतरिक वैराग्य था, दिखावा नहीं था, न साधनों में कहीं अटैच थे, न संबंधों में अटैच थे। जो बाबा से अटैच थे, बाबा ने उनको भी दूर किया, थोड़ा ज्यादा अटैच थे कहीं, उनको भेज दिया सेवा पर, जाओ इधर जाओ उधर जाओ। और जिन बिल्कुल डिटैच थे, हमारी दादी प्रकाशमणि जी को बॉम्बे से बुला करके, उनके हाथ में हाथ दे करके शरीर छोड़ दिया। इतना उपराम वृत्ति, इतनी न्यारी वृत्ति, सब कुछ अपना होते भी कुछ अपना नहीं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। देखो इतना बड़ा मधुबन है, हम लोगों को यहाँ पर रहते हुए 53-54 साल हो रहे हैं, कभी ये नहीं कह सकते मेरी चारपाई है, ये मेरा कमरा है, ऑर्डर हुआ खाली कर दो। एक बार यहाँ पर ओम शांति भवन बन गया तो दादी ने कहा सभी टीचर्स को बुलाओ, सभी टीचर्स भट्टी करने के लिए आए, लेकिन सभी आएंगे तो रहेंगे कहाँ। तो भाइयों को, हम सबको कहा गया तुम सब अपने कमरे खाली करो, एक भी पांडव भवन में नहीं रहेगा। सब खाली करो कमरे, जाओ उधर सब सो जाओ, जा करके कमरों में ओम शांति भवन के, इधर उधर जहां जगह मिले सो जाओ, सब बहनों को दे दो। जहां पर भी अपनापन, लगाव वाला अपनापन, मेरापन नहीं है, वही वैराग्य है। यूज कर रहे हैं, साधन है, सुविधाएं हैं, सब कुछ बाबा ने दिया है, लेकिन बाबा का है, मेरा नहीं है। उसने हमें यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए दिया है। जरा भी कहीं हम मेरा समझ करके बैठ गए तो मेरा मेरा ही बंधन है, वही फंसने और फंसाने का साधन है। इसलिए बाबा हमने बच्चों को इस समय कहते हैं, जो भी मैं पनाए या मेरा पनाए, उसको बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करो। तीन प्रकार का मैं पनाता है। एक, जरा भी कुछ हम अच्छा करते हैं, महिमा होती है, पद है, पोजीशन है, नाम है, धन है, साधन है, भले कोई कहे मेरे को अहंकार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घमंड के रूप में बोलना, चलना, बात करना, कोई सूक्ष्म अहंकार मैं। कोई कोई है जो बहुत जल्दी मैं करके निराश हो जाते हैं, मेरे कौन जानता है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देता, मेरे संबंध मुझे साथ नहीं देते, थोड़ी थोड़ी बातों को, पेपर्स को इतना बड़ा बना देते हैं। मैं निराशा वाला, दिल शिकस्त बनाने वाला, बाबा कहता है इसमें से भी मुक्त हो जाओ, ना अभिमान में आओ ना अपमान में आओ, स्वमान में जरूर रहो, स्वयं स्वयं को मान देना सीखो। हमारी दादियों ने इतना सबको सम्मान दिया, इतना सब कार्य किया कराया, लेकिन कभी भी उनको अहम भाव नहीं आया, मैं करती हूँ, इस शब्द ही प्रयोग नहीं किया। एक बात जो नए हैं, पुरानों ने सुनी होगी क्लासेज मेरी, मैं दादी की एक बात हमेशा सुनाता हूँ। दादी प्रकाशमणि लास्ट दिनों में 3-4 साल तक माउंट आबू में नहीं आ पाई, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ के वेदर में ऊपर होने के कारण ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। जो बड़ी आयु वाले होते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, और दादी जी को सांस की थोड़ी सी बीमारी थी, प्रॉब्लम थी, तो आती थी तो सांस फूलने लगती थी, खांसी शुरू हो जाती थी, परेशान होने लगती थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, दादी आप ऊपर नहीं जाओ, यह नीचे रहो शांतिवन में। लेकिन हम लोग जो दादी के साथ सदा ही सेवा पर थे, सुबह शाम मिलना ही होता था, तो दादी कहती अच्छा तुम जाओ, रात को सो के वहां सब देखना, संभालना और सुबह आ जाना। तो हम रोज अप डाउन करते थे, तो एक दिन ऐसे बैठी थी तो पूछने लगी पांडव भवन सब ठीक है? दादी बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, एक एक का नाम लेके, ज्ञान सरोवर ठीक है, म्यूजियम ठीक है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बहुत सारा समाचार पूछती रही। और हम लोग, हम ही थे, अकेले थे, बैठे थे, ऐसे बात कर रहे थे, तो जब सब बातों में कहा ना बहुत अच्छा है, बहुत बिल्कुल ठीक है, कोई बात नीचे ऊपर हो तो थोड़ी सुनाएंगे बड़ों को, अभी इतने बुजुर्ग को, तो कहती है अच्छा सब ठीक चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है, कैसे? अब कैसे शब्द जब बोला तो मैंने कहा दादी आप बैठी हैं ना यहाँ पर, आपकी इतनी अच्छे पवित्र शुद्ध संकल्प हैं, शुभ भावनाएं हैं, उन शुभ भावनाओं के आधार से पूरा यज्ञ बहुत निर्विघ्न और आगे चल बढ़ रहा है, कोई विघ्न नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये शब्द मैंने जब बोला, मेरे को आंख दिखाई, क्या बोला, फिर बोलो क्या बोला, दादी आप बैठी है ना, फिर रिपीट कर दिया मैंने, मुट्ठा ऐसे, तुम भूल गया ये मेरे संकल्पों से चलता है, बाबा के, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। आजकल कई लोग कह देते हैं ना अभी कौन है, ये भूल जाते हैं जिसका यज्ञ वो तो बैठा है ना, वो कहाँ गया है, वो जाएगा क्या? जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई है, जब तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, मैं कभी कभी, अभी जब से हमारी दादी रतन मोहनी दादी गई हैं, कई क्लासेज कराई मैंने इधर उधर, मैं परसों एक क्लास करा रहा था, उनका एक बड़ा परिवर्तन वो था जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए 69 18 जनवरी। कोई ने सोचा ही नहीं था कि बाबा चला जाएगा, फिर कैसे मुरली चलेगी, कैसे यज्ञ चलेगा, क्या होगा, कोई ने पहले से कुछ नहीं सोचा। चल रहा है, सब आराम से चल रहे हैं और बाबा अचानक गए तो इतनी हलचल हो गई, इतना क्वेश्चन हो गया, अब क्या होगा। मुझे तो याद आता है, मैं लौकिक घर में छोटा था ना, बैठा था और बहुत ठंडी थी, तो हमारे घर में अलाए आग जलाते ना, आग जला के सब जगह ऐसे बैठे थे परिवार के जितने सदस्य थे, मैं भी छोटा सा था, स्कूल में पढ़ता था, और ये पत्र अचानक पिताजी के हाथ में आया कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। और पिताजी ने पत्र पढ़ते ही कहा, ये बिल्कुल झूठा है, फेंक दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बाबा कैसे जा सकता है, बाबा जा ही नहीं सकता, ये झूठा किसने लिखा है, गलत समाचार है। तो हमारे चाचा जी वगैरह सब बैठे थे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कुछ तो हुआ होगा, ऐसे थोड़ी झूठा कोई बाबा के लिए लिखेगा, इंक्वायरी तो करो, जांच तो करो क्या हुआ है। जब फिर पता लगाया कानपुर में, उधर फोन ऑन किए, बताया, पूछा, हाँ बाबा ने शरीर छोड़ दिया। बस प्रश्न पर मुरली कैसे चलेगी, अभी मुरली कैसे आएगी, अभी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, और उस परिवर्तन से क्या निकला वो हम आप सब देख रहे हैं। इतना बड़ा यज्ञ, इतने बच्चे, देश विदेश में इतनी सेवाएं, और बाबा का रूप, सूक्ष्म पार्ट, अव्यक्त पार्ट जो चला है आज इतने वर्षों से, जो साकार में कहा था वो सब प्रैक्टिकल कर दिया बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने आके। और उसके बाद एक दादियों का युग चला, और उस दादियों के युग से इतना विस्तार हुआ, इतना उन्होंने सबको साथ लिया, सबको सम्मान दिया, कुछ स्वीकार नहीं किया, सब बाबा, अपना नाम नहीं, अपनी महिमा नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, बाबा बाबा बाबा। तीन पाठ बहुत पक्के थे, वैराग्य वृत्ति वालों को पक्के करने हैं, एक नामी, एक का नाम, जो भी हम करें एक का नाम, उसके लिए हम सब हैं समर्पित, उसके लिए हम सभी हैं, हमारे बाबा का नाम रोशन हो। बाबा चाहता मेरे बच्चों का नाम रोशन हो, लेकिन बच्चों के अंदर दिल में रहे कि हम ऐसे कर्म करें, ऐसी चलन हमारी हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो जो लोगों को लगे इनको कौन मिला है, बाबा का नाम वाला हो, लोग ये कहें इनको सचमुच कोई शक्ति चला रही, भगवान चला रहा है, एक नामी। और दादियों ने करके दिखाया, अपने नाम के लिए कुछ नहीं किया, बाबा का नाम, बाबा का नाम रोशन, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बाबा के ऊपर कोई दाग ना आए, बाबा का नाम कभी खराब ना हो, इतना टेंशन रखा। और दूसरा इतना ध्यान रखा कि यज्ञ का एक एक पैसा हीरे समान है, अमूल्य है, इकोनॉमी का अवतार बन करके रही, कभी भी कोई किसी तरह से भी, चाहे जितना पैसा आया, चाहे जितनी चीजें आने लगी, बड़े वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, लेकिन लास्ट तक भी हमने देखा दादियों के रग रग में इकोनॉमी समाई हुई थी। रतन मोहन दादी की इकोनॉमी मैं सुनाता हूँ। दादी को लिखने का बहुत शौक था, क्लास हो, मुरली हो, नोट्स लेना हो, कुछ भी हो, पत्र लिखने हो, इतना सारा जवाबदारी थी दादी की, पेड ऑफिस की जवाबदारी थी, इतनी टीचर्स की कन्याओं की ट्रेनिंग हो, संभालना, उनको लेटर लिखना, पत्रों के उत्तर देना। लेकिन दादी कभी मेरे पास वो पत्र अगर अपना लिखा हुआ भेजती थी तो पता कैसा कागज होता था, एक तरफ रफ कागज, जो कोई ने कोई लिख करके फेंक दिया हो, कोई ने लिख करके खराब कर दिया हो, या फोटोकॉपी मशीन से ब्लैक हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, एक तरफ जो अच्छा है, एक साइड को यूज किया उन्होंने। कभी कभी मैं आता था, दादी अभी तो बहुत है ना, पैसा है, यज्ञ है, इतना सर कागज है, ये क्यों आप इतना इकोनॉमी कर रहे हैं। बाबा ने हमारे रग रग में इकोनॉमी भरी है, एक कागज भी उन्होंने कभी भी व्यर्थ नहीं किया, हर चीज संभाली, अपने लिए ये नहीं, ये साधन वो साधन नहीं, वो तो फिर दूसरे लोग आए ये चाहिए वो चाहिए किया, लेकिन दादियों के अंदर इकोनॉमी का एकदम रग रग में बाबा ने भरा था। और तीसरी बात थी, जितना हो सके मन बुद्धि एकाग्र रहे, एकाग्रता। जितनी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, इन बात को ध्यान देना, इन सब सिद्धियों के पीछे मन और बुद्धि की एकाग्रता है। अगर हलचल है, संकल्पों में बहाव है, हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, तो कभी समय पर ठीक निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। बाबा अगर बच्चे से कराना भी चाहे, टच भी करे, तो भी बच्चा कैच नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं रखा। जो आया सोच रहा है, जो आया चिंतन कर रहा है, बुद्धि भटक रही है। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं अंदर से एक नाम ही, इकोनॉमी और एकाग्र चित्त, न कहीं दोस्ती न कहीं दुश्मनी। वैराग्य के अंदर दो शब्द हैं, अगर इसको थोड़ा संधि विच्छेद करें, वैर और राग। न किसी से वैर है न किसी से राग है, ना राग मतलब लगाव हो जाता ना, अति स्नेह हो गया तो इसका कनेक्शन जुट गया, राग हो गया। तो राग और वैर, इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी कुछ कर रहा है, कुछ गलत भी मेरे लिए कर रहा है, उससे भी दुश्मनी का भाव नहीं है, वैर भाव नहीं है। और कोई बहुत अच्छा है तो उससे बहुत अच्छाई की तरफ हम प्रभावित नहीं है, उससे भी लगाव नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये बाबा ने भरा है, विशेषताएं हैं, इसका अपना भाग्य है जो इसको इतनी विशेषताएं भगवान ने दी हैं। तो वैराग्य वृत्ति के अंदर हर बात में उपरांता है, हर बात में साक्षी दृष्टा स्थिति है, त्रिकालदर्शी स्थिति है, हर बात में मन बुद्धि की स्थिरता और एकाग्रता है। जितना हमारे जीवन में न्यारा और प्यारापन, इसका बैलेंस रहता है, ध्यान देना। कई बार जब वैराग्य आता है ना, तो किनारा कर लेते हैं, बात नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, ये करेंगे, पर वैराग्य है भाई, इसको वैराग्य पता नहीं किस चीज का वैराग्य आ गया, मुस्कुराता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, गुमसुम रहता है, इसको पता नहीं क्या हो गया, वैराग्य आ गया। तो बाबा कहता है ऐसा वैराग्य हमें नहीं चाहिए, ये हद का वैराग्य है। वैराग्य आंतरिक है, कोई दिखावा तो है ही नहीं। जितना न्यारा है उतना प्यारा है, परिवार का प्यारा है, सबका प्यारा है, और बाबा का प्यारा है, लेकिन न्यारा है देह विमान से, बाह्य मुक्ता से, व्यर्थ से। जितना हम न्यारे और प्यारे का बैलेंस रख करके चलेंगे, उतना दिखाई देगा ये वैरागी आत्मा। इसका राग द्वेष नहीं है, कहीं भी लगाव झुकाव कहीं नहीं है, किसी से टकराव नहीं है। तो अगर किसी से टकराव नहीं है और किसी की तरफ विशेष आकर्षण नहीं है, तो समझ लो हमारा वैराग्य ठीक है, बहुत न्यारी प्यारी। जैसे सीता जी के खिलौने की बात करते ना, खिलौना बाबा के सामने आता था, तो जब राम सामने आते तो सीता उसके सामने मुख कर लेती थी, जब रावण आता था तो पीठ कर लेती थी। तो बाबा कहता वो वैराग्य है कि रावण की दुनिया में रहते हुए उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उसकी तरफ हम देख नहीं रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, किस काम की ये दुनिया है, प्रयोग कर रहे हैं, साधन है ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन फंसे हुए नहीं है, चाहिए चाहिए कि चाहनाएं नहीं है। बाबा ने अनासक्त वृत्ति बना दी। आप सब चेक करना आज की दुनिया में, बाबा कहते हैं जैसे स्वर्ग की स्थापना बाबा कर रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरा स्वर्ग रावण ने भी बनाया है, माया ने भी कलयुग के अंदर अपना एक स्वर्ग बना दिया है। सब चीजें एक ही मॉल में चले जाओ, दुनिया भर की चीजें मिल जाएंगी। आसक्त है तो ये क्या करेंगे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा। कोई कोई मॉल में जाते हैं, जितना पैसा लेके जाते हैं सब वही दे आते हैं, और अपने घर को गोदाम बना देते हैं। घर नहीं रखते, गोदाम बना देते। कई जगह पर विदेश में गया तो एक जगह गया, दोपहर का समय था लंदन में, तो हमको भेजा गया था चक्कर लगा के और स्टूडेंट्स के घरों में। तो मैं एक भाई के घर में गया, उसकी पाठशाला चलती थी, तो दोपहर का समय था, भोजन किया तो कहता भाई जी अभी एक घंटा रेस्ट करके जाओ। तो हमने ठीक है, कहाँ रेस्ट करनी है, तो अपने कमरे में ले गया। तो उसके कमरे में चारपाई के चारों तरफ से इतने पैंट, इतने बुशर्ट, इतना सामान था। तो मैंने कहा ये कमरा है या गोदाम है। कहता भाई जी यहाँ बहुत महंगा है ना, स्टोर नहीं मिलते हैं इसलिए रखना पड़ता है। रखना ठीक है, लेकिन इतनी चीजें रख करके क्या करोगे, किसके लिए रखते हो। बाजार में गए, पैसा है, मॉल में गए, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और इकट्ठा करके सब इकट्ठा करके घर में रख दिया करके। मैंने ऐसे हंसते हंसते कहा आप क्या करोगे इसको, अच्छा ये बताओ। नहीं हम मधुबन जाते हैं ना तो मधुबन में सबको दे आते, हमने मधुबन वालों को तो मना है पैंट सूट पहनने के। क्या करोगे आप, किस लिए सब कर रहे हो। हम सबको इस बात पर बहुत ध्यान देना, इकोनॉमी माना ही क्या, जो कुछ है धन बाबा का दिया हुआ है, बाबा के काम में लगे, स्थापना के काम में लगे, कुछ सफल हो। और ऐसे ही देखा देखी में, शौक मौज में जो चीजें देखी, आकर्षण किया और उसके तरफ हम अपना पैसा गंवा के आ गए। हमारी दादी जानकी ने हम लोगों को कहा था एक दिन कि अगर कोई चीज तुम्हारे पास सौगात की या कोई चीज है मिली हुई है और तुम 6 मास यूज नहीं करते हो, तुमने तो मेरे काम की नहीं है, तो दूसरों को दान करो, सेवा में लगा दो। स्टॉक क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कौन आएगा पीछे। कई होते हैं ना, बहुत ऐसा शौक होता है, जो चीजें मिलेंगी पेटियां भर देंगे, अलमारियां भर लेंगे, और शरीर छोड़ते हैं तो सारा का सारा ऐसे नया रखा हुआ है। जीवन में कई ऐसे हमारे पास थे पुराने लोग, जीवन में कभी उन्होंने नई चीज पहनी नहीं होगी, लेकिन जितनी नई चीजें मिली वो सब अलमारियों में पेटी में भर के रख लिया, जब शरीर छोड़ा सबका सब निकल आया। किसके लिए रखा है, किस लिए रखा है। अगर जीते जी कोई सेवा में लग जाता तो उसको दुआएं मिलती, उसका पुण्य जमा हो जाता, गया तो यज्ञ में, लेकिन उसने अपने हाथों से तो कुछ नहीं किया ना। इसलिए अंदर से आंतरिक है कि मुझे क्या चाहिए, भगवान बाबा हमें 2 रोटी खिलाता है, 2 कपड़े पहनाता है, बस वो क्या चाहिए। संग्रह वृत्ति है तो माना हमारा वैराग्य नहीं है, कोई चीज का संग्रह किसके लिए हम कर रहे हैं। जब जानते हैं अब सबको जाने का समय आ गया, वापस चलना है ना। वैराग्य वृत्ति की सबसे बड़ी बात, बाबा रोज वैराग्य दिलाता है, अरे बच्चे विनाश हुआ कि हुआ, विनाश हुआ जरूर होगा, वैराग्य दिलाता है बच्चे आप फंसो नहीं कहीं भी। और शायद अगर हम लोगों को विनाश की बात न सुनाई होती तो शायद हम बाबा के बच्चे नहीं बनते, समर्पित नहीं होते। पिताजी ने इतना पक्का किया था 76 में, विनाश 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 सब गांव में डोरा पेट दी, 76 में विनाश हो जाएगा। बाबा की मूल्यां चलती थी, बच्चे बस संगम 100 साल का है ये नहीं सोचा था, लेकिन ब्रह्मा की आयु 100 साल 76 में पूरी हो जाती। अब दादा लेखराज की आयु पूरी हो रही थी 100 साल, उसी को पकड़ करके 100 साल का संगम है, विनाश हो जाएगा। मेरे को तो वो घड़ी याद आती है जब दादी ने कहा ना अभी पढ़ लो, अभी बहुत छोटा है, अभी कम से कम 18-20 साल का होना तब निर्णय लेना, बहुत कुछ इसी झोपड़ी में यहाँ झूले पर बिठा के समझाया मेरे को दादी, एक तरफ मैं बैठ के समझा रही मेरे को, दादी अभी पढ़ के क्या करूँगा, मेरा दिल है मैं सेवा में लग जाऊं। भाई वो दिल तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी उम्र छोटी है, अभी तेरे पिताजी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी देंगे। तो मेरे मुख से इतना ही शब्द निकला, दादी अभी तो विनाश होने वाला है। तो हंसने लगी, कहती विनाश होगा वो तो ठीक, लेकिन अभी तुम पढ़ लो थोड़ा सा। अब मैं पढ़ने के लिए गया, वो 71 वाली लड़ाई चल गई, और वो लड़ाई इतनी तेज थी बांग्लादेश वाली, आजाद कराने के लिए नहीं हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ जब, शाम को 6 बजे सायरन बजता था और सब लोग अपने कमरों में, एक लाइट बाहर नहीं जला सकता, बाहर नहीं निकल सकता, पूरे शहर में जहां पढ़ते थे फुल कर्फ्यू। हम कहते विनाश शुरू हो गया, और दादी कहती पढ़ लो, नहीं पढ़ना, आया बैराग्य, उठाया थैला और जो पेपर दिया है स्कूल का, फट से बैठा ट्रेन में और आ गया मधुबन में। क्यों आ गया? दादी कहती क्यों आ गया, तो दादी आपने कहा था ना अगर तुम्हारी दिल हो तो पिताजी की चिट्ठी लेके आना, मैं चिट्ठी लेके आया। अरे भाई तुम पढ़ लेता ना थोड़ा भी, दादी विनाश शुरू हो गया। ये विनाश ने हम लोगों को वैराग्य दिला दिया, इसलिए अभी तो हम देख रहे हो, तो उस समय तो कह रहे थे लेकिन अभी तो सभी कह रहे हैं, उस समय हम कहते थे और आजकल क्या कह रहे हैं सब, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर भविष्यवाणियां अभी पढ़ने लगो ना 25, 26, 27 की, कितनी भयंकर भविष्यवाणियां हैं, लेकिन अभी वैराग्य ब्राह्मणों को नहीं आया। कई बार जब हो जाएगा घटना घटेगी तब आएगा क्या? एक दिन गुलजार दादी से हमने कहा, बैठी थी ऐसे, दादी ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ब्राह्मण परिवार में इतना है नीचे ऊपर, कैसे सुधरेगा, कौन सुधारेगा? कहते वैराग्य आने दो, वैराग्य आने दो, धीरज धरो, वैराग्य आएगा अपने आप सुधर जाएंगे सब। जब तक वैराग्य नहीं आता है तब तक त्याग नहीं होता। कोई भी त्याग करके गया है, घर छोड़ के गया, संबंध छोड़ के गया, राजाई छोड़ के गया, सबके त्याग की कहानी आप देख लो, उसको वैराग्य आया पहले। जब वैराग्य आ गया इससे होगा, इससे सब खत्म हो जाएगा, अंदर से आया और छोड़ के चल दिया। लेकिन जिससे मानसिक वैराग्य आया, ऊपर ऊपर का वैराग्य नहीं, जो अंदर से आ गया वो टिक पाया, और जो ऊपर ऊपर से छोड़ के गया थोड़े समय के बाद फिर से वो याद आया, वापस आ गया। बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे अंदर से आंतरिक आना चाहिए कि संसार में कुछ भी नहीं है। अभी तो किसी भी घड़ी, अभी अचानक की घटना है, तो आप देखो रोज हमारे ब्राह्मण परिवार में शाम को मौज से योग कर रहे हैं, सौगात ले रहे हैं। अभी अभी एक भाई था मीटिंग में, शाम को मिला, सौगात का समय था 10 तारीख, 10 तारीख को संस्कार दादी का हुआ, रतन में दादी का, और शाम को हमारी मीटिंग थी। मीटिंग में लास्ट में सौगात सबको मिल रही थी, वो भाई आया, सौगात लिया, मिला सबसे, संतोष दीदी से मिला, और शाम को 11 बजे वहां से गया। कुछ थोड़ा सा दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, उसने शरीर छोड़ दिया। क्या मौत, क्या चल रहा खेल, कोई तकलीफ नहीं, कोई सब मीटिंग किया, सब सौगात लिया, सबसे मिला जुला और चला गया। ऐसे ऐसे खेल हो रहे, कौन कब चला जाएगा, फिर भी वैराग्य नहीं आता। हम सबको अंदर से अंतिम घड़ी की स्मृति सदा रहनी चाहिए, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा का ये महावाक्य, वैराग्य आ गया सब बातों से, पालना दिया, मुरलियां चलाई, क्लास कराई, इतनी बीमारी में भी चेहरे पर नहीं आने दिया, लेकिन अंदर से हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जाना है, जाना है, जाना है। दीदी ने धुन लगा दी, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। इतनी जवाबदारियां, दादी जी से भी ज्यादा, दादी जी बाहर का देखती थी, दीदी मनमोहनी अंदर का देखती थी। एक एक बात की पूरी जवाबदारी, पूरा ध्यान, सवेरे से रात तक भंडारे में क्या बना है, सब्जी कहाँ से आई है, कितनी आई है, कितने लोग आए हैं, इनको पिकनिक करानी है, इनको ये सौगात देनी, ये फुल जवाबदारी दीदी की मधुबन में, पांडव भवन में। उपनाम ऐसी हुई, हम जब जाते थे ना कोई पत्र लेकर के, पत्रों की जवाबदारी थी, जवाब लेने के लिए जाएं, अरे छोड़ लिख दे बाबा को याद करूं, अब घर जाना है, अब घर जाना है। दीदी कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, लिख दो तुम बाबा को याद करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कम से कम मैं सोचता 4-5 मास ये धुन लगा दी, अब घर जाना। ओम शांति भवन बना, उद्घाटन हुआ 83 में, और जुलाई में शरीर छोड़ा। बस वही बीच का पीरियड था 5-6 मास का, फरवरी में उद्घाटन हुआ और जुलाई में शरीर छोड़ा, कितना मास हुआ? 5 मास। उस 5 मास में उन्होंने सब कुछ, यज्ञ को छोड़ा नहीं, सब कार्य थे, देखती भी थी, लेकिन एकदम उपराम, एकदम न्यारी, एकदम हर बात में डिटैच। नहीं तो एक एक बात, इतना पहरा हम लोगों पर था, इतना ध्यान था, इसने योग किया या नहीं किया, इसने खाना खाया या नहीं खाया, एक एक चीज पर इतना पहरा था कि मधुबन वाले हैं, मधुबन में रह रहे हैं, इनको संग अच्छा मिले, इनको आध्यात्मिक वातावरण अच्छा मिले, हर प्रकार की इनको पालना मिले, सब चीजों का फुल अटेंशन। जब हम सब छोटे छोटे आए और दीदी दादी के अंदर बहुत बड़ा प्लान था यज्ञ को आगे बढ़ाना है, बाबा के सामने तो कोई समर्पित ही नहीं हुए थे। हम जब आए थे 30-35 लोग थे, लेकिन दीदी के अंदर था अगर ये मकान बनेंगे, ये घर बढ़ेगा, बच्चे आएंगे, तो इनको हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए हैंड्स होने चाहिए। तो हैंड्स चुने, खुद ही उन्होंने चुने, परखने की शक्ति बहुत जबरदस्त है। पालना भी उनको उसी तरह की दी, कोई चीज की कोई को तकलीफ ना हो। लेकिन जब उपराम हुए तो इतना न्यारी प्यारी, एकदम खुशनुमा स्थिति, किसी चीज में जैसे कोई रग नहीं, कोई लगाव नहीं, देखते हुए भी नहीं देखना, कोई भी बात में कोई प्रकार का करेक्शन नहीं, सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा। ऐसी उपराम स्थिति, ऐसी साक्षी दृष्टा की स्थिति, ऐसी नॉलेजफुल स्थिति, बस घर जाना है, घर जाना है। यह है वेद का वैराग्य। दादी ने क्या किया, वैराग्य आया, सब कुछ होते हुए भी ऐसे चाहो, हम लोगों से कभी आंख बंद नहीं किया, कोई आता था ऐसे आंख बंद, दादी बड़ी मुश्किल से आंख खोलती थी, कोई बात करो, कोई जवाब देना है तो एक शब्द में दिया, नहीं तो न्यारी हो गई, उपराम हो गई। तो हम सब बेहद के वैरागी है ना, क्या करेंगे अभी, अंदर से अपने ऊपर सेवाएं करो, कर्म करो, सबको संभालो, सब कार्य व्यवहार करो, प्रवृत्ति में रहो, लेकिन एकदम न्यारे प्यारे ट्रस्टी बन के रहो। बाबा ने काम दिया है, बाबा करावनहार है, हमें उसने निमित्त बनाया है। चार शब्द बाबा ने दिए थे, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण। इन चारों शब्दों को अगर प्रैक्टिकल में कोई ले आए, माना वो वैरागी है। दादी जी ने इस बात को बहुत पक्का किया हुआ था, बाबा कराने वाला है, उसका यज्ञ है, उसके बच्चे हैं, हम अपने ऊपर बोझ क्यों लें। एक बार अखबार वाले आए, पूछा, दादी आपके पास इतनी बहनें समर्पित हैं, इतनी कुमारियां हैं, यंग हैं सब, आज कोई माँ बाप को एक यंग बच्ची कुछ नीचे ऊपर हो जाता है, कितना डिस्टर्ब होता है उसको, सारा लगता है पता नहीं अब क्या होगा, आपके पास इतनी सारी बहनें हैं, आपको चिंता नहीं होती, टेंशन नहीं होता। तो दादी कभी कभी हंसते हंसते कहती थी, जिसको टेंशन है ना उसको टेंशन होता है, समझा, टेंशन। 10 बच्चे हैं तो उनको टेंशन होगा, मेरे तो बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे तो बाबा के हैं, मेरे को टेंशन होगा है? बहुत बहुत टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछते थे लोग दादी जी से, और दादी इतना हल्की, अरे भाई मैं क्यों टेंशन लूं, बाबा बैठा है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, कराने वाला वो है, वो जानता है सबकी जन्म पत्री, मुझे तो बाबा एक मिनट में अपने पास बुला ले। नींद आती है दादी, अरे नींद ऐसी आती है मैं बिस्तर पर जाती हूँ, बाबा कहते बाबा गुड नाइट, ऐसे ऐसे तकिया पर रखते हूँ सो जाती हूँ, कभी मेरी नींद नहीं फिटती। ऐसी स्थिति कैसे बनी, जब सब कुछ बाबा के ऊपर समर्पित कर दिया, सब तेरा है, तेरा है, तेरा है, तेरा है, और जहां मेरा कहा वहां पर फंस गए। उन्होंने कभी मेरा नहीं समझा, इतने बड़े यज्ञ की संभाल की, पालना दी, इतना विस्तार किया, एक एक चीज का ध्यान, इतना ध्यान जो हम लोग कभी कहते तुम लोगों को नींद आती है क्या, सो जाते हो, देखो बादल आ गए हैं, अनाज बाहर पड़ा है, आओ आओ सब भाग करके आओ। मतलब यज्ञ का एक एक कणा भी उनके मुहर समान है, बेकार नहीं होना चाहिए, उसमें अलबेला नहीं, आलस्य नहीं, खड़ी हैं खुद, जवाबदार हैं, लेकिन जवाबदारी निभाते हुए भी मेरा कहीं करके फंसे नहीं, सारा यज्ञ मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं, ये है वैराग्य। इसलिए सबको संभालो, घर को संभालो, परिवार को संभालो, बिजनेस करो, नौकरी टोकरी जो कर रहे हो करो, उसकी सबको छुट्टी दी है बाबा ने, लेकिन ये कहा है बच्चे सब कुछ करते हुए न्यारे रहो, प्यारे रहो, बाबा को समर्पित कर दो, बस तुम बैठा है ना, मैं क्यों चिंता करूं, बाबा बैठा है मैं क्यों चिंता करूं, है ऐसा ही स्थिति कि नहीं, कुछ तो जवाबदारी है थोड़ी थोड़ी है। तो यहाँ क्या करेंगे सब, मेरा मेरा जो है ना वो लिख के बाबा को तेरा 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 तर जाएंगे, पार हो जाएंगे, जहां भी मेरापन आए। हम लोग अगर सोचे ना, इतनी सारी जवाबदारी बढ़ती जाती है, एक जाता है तो दूसरे पर सारी जवाब, जो हाँ जी करते ना उनके पास सब आ जाता, हाँ जी कहने वाले हैं ना उनके पास सब सेवाएं आ जाती है, उनकी दादा गया उनकी सेवा, दूसरे गए उनकी सेवा, मेरे ऑफिस में राजू तुम करेगा, ठीक है ठीक करेंगे करेंगे, लेकिन सब कुछ करते हो इतने हल्के रहते, बाबा करा रहा हमको क्या करना। जवाबदारी अगर है, आज इतने सब पत्र आते हैं सबकी जवाबदारी है, 3-4-5 महीने मुरली तैयार करनी है, पत्र पुष्प भेजने हैं, अभ्यक्ति सारे तैयार करने हैं, वरदान तैयार करने हैं, खेती बाड़ी का काम इतना आ गया सोचा ही नहीं था ये भी सामने साथ में आ जाएगा, किसानों को ट्रेनिंग दिलानी है योगिक खेती के फार्म में, उसके द्वारा सेवा करनी है, वो भी सब साथ। लेकिन इतना सब होते हुए भी कभी ये नहीं लगता मेरा है, बाबा करा रहा मैं क्या कर रहा हूं। आज कहा ना 1000 भुजा वाले जिसके साथ है, 2 भुजा वाले की जरूरत है क्या साथ में, 1000 भुजाओं से बाबा अपना काम करा रहा है, और जब तक स्थापना संपन्न नहीं हुई है तब तक वो पीछे हटने वाला नहीं है, करके ही जाएगा। इसलिए हम सब बाबा को इतना साथी बना लें, साथ भी रहें और साथी भी बना के रखें, कंपनी भी है कंपेनियन भी है, साथ है तो कंबाइंड है, कराने वाला वो है, और साथी तो इतने दिए हैं सब करने वाले, लेकिन खुद भी साथी आगे बन करके हाथ बढ़ाता है। बाबा को सदा ऐसे साथ रखो और साथी बना करके उसको यूज करो, यूज करना सीख जाओ बस। हम तो बहुत यूज करते हैं, बाबा तुम बैठा ये काम है आजा कर ले आकर के, कराएगा तो अपने बच्चों से ही ना, लेकिन बोझ नहीं लेना, कभी भी कोई बोझ नहीं आता, कभी भी ऐसे नहीं नींद पिट गई ये काम पड़ा। अगर मान लो मैं भूल भी गया ना, कई बार ऐसा होता है भाई सेवाएं करते करते इधर जाना उधर जाना, भाग के आए बाहर से, ये डायरेक्शन नहीं गया, ये पत्र नहीं गया, अभी परसों दादी जी के भोग के लिए कोई नहीं लिखा, भाई 20 तारीख को सब सेंटर पर भोग लगेगा, यहाँ से फोन आया राजू भाई अभी तक मेल नहीं गया किसी को भोग लगने का, अच्छा मेल नहीं गया, ये जवाबदारी मेरी है भाई, मैं गया बैठा बैठ के लिख करके किसके नाम से अभी भेजूं, बाबा के नाम से भेज देता हूं। कराने वाला सब कराता है, सिर्फ बाबा कहता है अपनी बुद्धि की लाइन को इंगेज नहीं करना, मैं टच करूंगा तुम कैच करो, और कैच करने के साथ मैच करो मिलाओ। क्या श्रीमत प्रमाण कैचिंग है? कई बार हम कैच करके अपनी मन मत चला लेते, पर मत चला लेते मैच नहीं करते। इसलिए टचिंग कैचिंग और मैचिंग, इस तीनों शब्दों पर ध्यान देना, समान होना चाहिए। अगर बाबा की टचिंग है तो मुरलियों से श्रीमत से बड़ों की आज्ञा के अनुसार मैच करना चाहिए। मैच नहीं हो रहा है माना हमारी कैचिंग पावर ठीक नहीं है, श्रीमत कुछ कह रही है और हम कह रहे हैं हमको बाबा ने ये टच किया, बाबा ऐसे टच करेगा क्या? और टचिंग को कैच वही कर सकता है जिसने अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ रखा है, क्लीन रखा है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, किसी के प्रति भी कोई ऐसी व्यर्थ भावनाएं नहीं। आप सब इस बात को ध्यान देना, यथार्थ बाबा की टचिंग को वही कैच करता है जिसने अपनी बुद्धि में किसी के प्रति भी कोई भी बातें नहीं रखी, न किसी की अच्छाई का प्रभाव है न किसी की बुराई का प्रभाव है, न गुणों पर आकर्षित है न अवगुणों की तरफ ध्यान है, बहुत स्वच्छ है निर्मल है, सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे ठीक हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, हम अपनी स्थिति क्यों बिगाड़े। हर आत्मा अपने आप में तो भगवान की चुनी हुई है ना, उसकी नजर में है ना, उसने उसे चुन के निकाला है। कभी भी ये शब्द न निकले तो कोई काम का ही नहीं है, सब काम के हैं बाबा के, कुछ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी काम के हैं, क्यों? कम से कम उसका ही उसको याद तो करते हैं, उसके नाम पर पवित्र तो बने हैं, अच्छे वाइब्रेशंस तो हैं, हम सब बाबा के बच्चे बहुत ऊंची नजर से हर आत्मा की विशेषताओं को देखते चलें, विशेषताओं को काम में लगाएं, अपनी विशेषताएं भी यूज करें और जिसकी जो विशेषताएं वो सेवा में लगाएं, न कहीं पर फंसे न किसी को फंसाएं। अगर वैरागी है तो कहीं भी फंसा नहीं है, न फंसता है न फंसाता है। दादी जी एक शब्द कहती थी जानकी दादी, मैं तो किसी में नहीं फंसती लेकिन मैं ध्यान ये देती हूं कि मेरे में कोई न फंस जाए। ध्यान ये देना है कि मेरे में अगर मैंने बहुत प्यार दे दिया, मैंने बहुत किसी का सहारा बन गए तो मेरे में फंस जाएगा वो आकर के। बैलेंस से चलो, कोई चीज की अति अच्छी नहीं है। अति प्यार दे दिया तो भी फंस जाएगा। ये उन्होंने हमें बहुत पालना दी, बहुत स्नेह दिया, बहुत हर प्रकार से ख्याल रखा, लेकिन जैसे बाबा भगवान के लिए देखो आता है प्यार का सागर बन करके प्यार लुटाता है, लेकिन जब डिटैच होता है तो ऐसे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं ऐसे एक मिनट चला जाता है। ये नहीं जाने में देर लगती है, ऐसे आने और जाने का अभ्यास हम सबको भी ये करना है। शरीर में आए, शरीर से अलग हो गए, कहां जाएंगे अलग, सूक्ष्म शरीर में, लाइट के शरीर में, हड्डी मांस के शरीर का भान निकल गया, मैं आत्मा लाइट के शरीर में चली गई। ये अभ्यास जो है ना, ये उपराम बना देगा, न्यारा प्यारा बना देगा, इन दैहिक कर्मेंद्रियों की आकर्षण से आत्मा मुक्त होती जाएगी। आधार लेंगे, कर्म करेंगे, कर्म पूरा हो गया, शरीरी हो गए, विदेही हो गए, फरिश्ता स्थिति में आ गए। इसका अभ्यास वर्तमान समय हर एक को करना है, यही अभ्यास हमें अंत समय में पास करेगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि अटक जाएगी, फंस जाएगी, लटक जाएगी। जो भी साधन है, सुविधाएं हैं, जो बाबा ने दिया है, सबका प्रयोग करते हुए भी ये चेकिंग जरूरी है कि कोई भी चीज में आसक्त तो नहीं है, है यूज कर रहे हैं। अगर मान लो ना हो किसी कारण से, आज हमारे पास मान लो इंटरनेट है, बहुत सारा सुख मिल रहा है, मैं वैसे यूज कम करता हूं, लेकिन मैंने देखा है सारे विश्व का कनेक्शन बिना खर्चे से व्हाट्सएप पर हो रहा है। आज यहां बात की, आज लंदन है, हमें आज अमेरिका, आज फलाने जगह बात हो रही है, उधर का इधर की लेन देन हो रही है, कोई भी बात करनी होती है 2 मिनट में ऑन किया, उधर से बात कर लिया। साइंस के साधन कितने अच्छे हैं, लेकिन अगर इसको हम गलत प्रयोग करने लगे तो देखना। और मान लो आज इंटरनेट फेल हो जाए, मेरी क्या स्थिति होगी, कभी पूछा अपने आप से? अगर ज्यादा आधारित है तो कभी भी परेशान करेगी ये स्थितियां, ये साधन परेशानी के कारण बन जाएंगे, और होना तो है ही, होना है ना कि नहीं। इसलिए यूज जरूर करो, यूज करने के लिए मना नहीं है, लेकिन उस पर फंस करके आसक्त होकर रहे, इतना मालिक बन करके करो। 5 मिनट अगर करना तो 5 मिनट से 6 मिनट नहीं होना चाहिए, कर लिया रख दिया, लेकिन ये अच्छा आ रहा, ये अच्छा आ रहा, ये अच्छा आ रहा, ये बात देखते रहते नींद पिटा देते, आंखें खराब कर लेते, ये तो फंस गए ना। वैराग्य वृत्ति है, बाबा कहता है साधन है यूज कर लो, लेकिन वैराग्य ये है कि इसमें हम फंसे हुए नहीं है। जो चीजें हैं हमारे पास, जो साधन सुविधाएं बाबा ने दी हैं, बाबा कहते थे एक दिन प्रकृति आपकी दासी बनेगी। प्रकृति दासी माने क्या, ये सब साधन सुविधाएं आपके लिए तो हैं, लेकिन आप प्रयोग करते करते उसके अधीन हो गए, माना आपके अंदर वैराग्य नहीं है। अधिकारी बन करके यूज करो, कर्म करो, न्यारे हो जाओ। यूज किया, न्यारे हो गए, तो इसका अभ्यास करना है। और जब समय मिले आप सब ध्यान देना, इन कर्म इंद्रियों से डिटैच होने का अभ्यास करो। ऐसे लगे जैसे शरीर में प्रवेश किया, आधार लिया, कर्म किया, न्यारे हो गए, फिर कहीं भी आकर्षण नहीं होगी, कोई आकर्षित नहीं करेगा, ना देह आकर्षित करेगी, ना संबंध आकर्षित करेंगे, ना साधन, और सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन गए संस्कार, अपने ही संस्कार। क्या करें, आज जितनी आत्माएं अधीन होकर के गलत कर्म कर रही हैं, उसका कारण है संस्कारों पर अटेंशन नहीं। उनके संस्कार जो बने हुए हैं, कर्म करते करते विकारों के अधीन होते होते, कर्म इंद्रियों के देह मान के अधीनता के कारण आज ब्राह्मण बनने के बाद, श्रीमत मिलने के बाद, सब कुछ समझ होने के बाद कुछ न कुछ संस्कार उनसे गलत करा बैठते हैं। फिर कहते हैं मैं चाहता नहीं था, ये जो स्थिति है परवश स्थिति, पराधीन स्थिति, क्या हम आत्माएं इतने उपराम हैं जो ये अधीनता समाप्त हो जाए? बस सब चेक करना, अधीनता नहीं चाहिए। आंख धोखा दे, मुख धोखा दे, कई लोग कहते हैं सोचते सोचा नहीं था, निकल गया, बोल दिया, हो गया। अब हो गया तो उसके बाद तो पश्चाताप ही करना पड़ेगा। क्या इतने अधिकारी बने हैं कि जो चाहे वही सोचे, जब चाहे बोले, नहीं तो बोलना बंद कर ले? स्टॉप, स्टॉप, स्टार्ट। अपने संकल्पों को स्टॉप करके देखो, स्टॉप ज्यादा नहीं होंगे, थोड़ी देर के लिए एक सेकेंड में अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्टॉप करो और फिर वही संकल्प उठे जिधर जाना है, जो करना है। ये अभ्यास करेंगे ना तो कर्म इंद्रिय जीत बन जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। संसार में रहते हुए ऐसे लगे संसार तो असार है, कर्म करो न्यारे हो जाओ। इसको बाबा कहते हैं संसार में रहते हुए भी, एक स्लोगन यहाँ कहीं लिखा था, मैं पढ़ता था कभी कभी, संसार में रहो, संसार के अंदर जैसे सागर में नाव रहती है, नाव के अंदर सागर नहीं होता, संसार सागर है, उस सागर में नाव की तरह रहो, आपके ऊपर सागर हावी न हो जाए। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज देखो सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, किसी तरफ भी आकर्षण न हो, तब कहेंगे वैरागी है, उपराम है, साक्षी है, नॉलेजफुल है। ठीक है, तो ऐसे वैरागी बन करके अभी वर्तमान समय जो कमियां कमजोरियां हैं वैराग्य के आधार से वो सहज छूट जाएंगे। और जब ऐसा वैराग्य आ जाएगा ना, सतयुग की शुरुआत कैसे होगी? दो ही चीजें होंगी, योगित बच्चे जन्म नहीं देंगे ना, विकेत नहीं देंगे, एडवांस पार्टी की योगी आत्माएं गई हैं वही देंगी आकर, देवताओं को उतारना है। उस समय कोई भी विकार के अधीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत बड़ा विनाश होगा और उस विनाश में जो थोड़ी बहुत आत्माएं बचेंगी, कई बार बाबा कहते ना कि बहुत दूर दूर कोई टिमटिमाता हुआ दीपक दिखाई देगा, लाइट दिखाई देगी, ऐसे समय में जो आत्माएं बची हैं विनाश के बाद, बहुत अंदर से आंतरिक वैराग्य होगा और वैराग्य के कारण कोई विकारों को सताएगा नहीं, कोई कर्म इंद्रियों की अधीनता नहीं रहेगी। उस समय उसका वैराग्य और ऊपर से जो आत्मा आ रही है उसका योग बल, अपना बल, योग बल से जन्म होगा। एक तो योगी पिछले जन्म का है, वो इस जन्म में योग नहीं कर रहा है एडवांस पार्टी, लेकिन वो जन्म देने के निमित्त है और उसका आधार बन गया वैराग्य। तो वर्तमान समय बाबा कहता है संसार में रहते हुए अंदर से रहे कि संसार अभी गया कि गया, अब तो हमें नई दुनिया में चलना है, घर जाके सतयुग में आना है, इसलिए कहीं भी फंसना नहीं, सब कुछ करते हुए भी न्यारे प्यारे उपराम होकर, अनासक्त होकर के रहो, कोई भी संग्रह वृत्ति नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बाबा खिलाएगा आराम से रखेगा, जो कुछ है जीते जी सब कुछ सफल हो जाए। जो शक्ति बाबा तूने दी है, तन की दी है, मन की दी है, धन की दी है, विशेषताओं की दी है, जो शक्ति है ईश्वरीय सेवा में स्थापना के काम में लग जाए, सहज अंतिम समय में बाबा की याद आएगी, अंतमति सोगति होगी, नहीं तो कहीं न कहीं अटक जाओगे। अगर कहीं भी कोई चीज छिपा दिया, कोई भी चीज रखी दी, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? अंत में वही याद आएगा। इसलिए जीते जी सब सफल करके उपराम रह करके बाबा के पास जाना है, ध्यान रखना। ओके, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई जी, आपने जो एकदम स्पष्टता की कि कैसे वैराग्य वृत्ति में विशेष चार बातें बताई, एक नामी इकोनॉमी और साथ साथ एकाग्रता। तो इन बातों से हम अपने आप को सभी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आई है, अगर आई है तो कितने परसेंटेज तक आई है। और आपने बहुत सुंदर दादियों का एग्जाम्पल बताया, प्रैक्टिकल उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है दादियों को, इसलिए अपने अनुभूति के हिसाब से उन्होंने सब हमारे सामने स्पष्ट किया। तो जो ये विषय है बहुत यूं तो गहरा है, लेकिन जो भी आज हम सभी को उपलब्ध हुआ है उसको हम सभी अपने जीवन में प्रैक्टिकल अवश्य लाएंगे, इस संगम युग में अपना सर्वस्व सफल करके सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसी शुभ भावना, शुभकामना आप सभी के प्रति राजू भाई जी को है और मुझे भी है, दादियों को भी है, बड़ों को सभी को है। ओम शांति।